कामायनी में रूपक तत्व, कामायनी के आमुख में ग्रंथ के रूपक तत्व के संबंध में संकेत रूप में महाकवि ने लिखा है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं तब भी उसके तिथिकम मात्र से संतुष्ट न होकर मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है? आत्मा की अनुभूति, हाँ उसी भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर भी वे सत्य घटनाएं स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं, किंतु सूक्ष्म अनुभूति या भाव चिरंतन सत्य से के रूप में प्रतिष्ठित होता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की अभिव्यक्ति होती रहती है। आगे प्रसाद का कथन है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी में रूपक तत्व और उसके विन्यास का स्वरूप प्रसाद के उपर्युक्त वक्तव्य के सहारे खोजा जा सकता है। वैसे मुख्य स्रोत मूल ग्रंथ कामायनी तो है ही। कामायनी में रूपक तत्व की छानबीन करने के पूर्व हमें प्रसाद की प्राग ऐतिहासिक विषयक अवधारणा को समझ लेना चाहिए। प्रसाद की मान्यता है कि वस्तुगत प्रमाणों से रहित होने के कारण प्राग इतिहास आज के मनुष्य के लिए अविश्वसनीय हो गया है। आज का मनुष्य तिथि सम्मत स्थूल घटना को ही सत्य और प्रतीत योग्य मानता है, जबकि मनुष्य के लिए स्थूल घटनाओं का विशेष महत्व नहीं है। समय के दीर्घ अंतराल से और जगत के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाने से वास्तविक घटना भी हमें असत्य लगने लगती है, किंतु घटना की सत्यता का आधार स्थूल वस्तु न होकर अनुभूत्यात्मक भाव सत्ता है। मनुष्य का भाव जगत अपनी सत्यता में चिरंतन और अपरिवर्तनशील है। मनुष्य का भाव शाश्वत और एक रस है। उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम और साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। काव्यों और नाटकों में, कहानियों और उपन्यासों में हम भाव जगत की ही सत्ता को चित्रित पाते हैं। स्थूल घटनाओं, चरित्र या दृश्य से हमारा साक्षात सारोकार नहीं रहता, लेकिन भाव जगत की मान्यता को हम इन्हीं के माध्यम से देखने के अभ्यस्त हो गए हैं, इसीलिए हमारा ध्यान सामान्यतः इन्हीं पर रहता है। किंतु यदि साहित्य का भाव जगत असत्य ही तो स्थूल घटना के सारे साज संभार रहते हुए भी साहित्य हमारा अनुरंजन नहीं कर सकता, हम उससे तादात्म्य ही स्थापित नहीं कर सकते। कामायनी में निबद्ध श्रद्धा और मन की कथा का स्रोत ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण है। प्रसाद ने आर्य ग्रंथों में निबद्ध घटनाओं को सत्य माना है, इसीलिए मनु और श्रद्धा उनके लिए काल्पनिक न होकर ऐतिहासिक पात्र हैं। उन्होंने मनु को भारतीय इतिहास का आदि पुरुष कहा है। तात्पर्य यह है कि स्वयं कवि ने कामायनी में रूपक तत्व की संभावना को स्वीकार किया है, किंतु रूपक तत्व कामायनी का प्रधान तत्व नहीं है। प्रसाद के अनुसार कामायनी की कथा वस्तु जहाँ तक आर्य ग्रंथों के मेल में है वहाँ तक वह ऐतिहासिक और प्रधान वस्तु है। कथा श्रृंखला को मिलाने के लिए कवि ने यत्र तत्र कल्पना का समावेश किया है। उसकी दृष्टि में कामायनी में रूपक का स्थान आनुषंभिक है, प्रधान नहीं। उसका स्पष्ट कथन है यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ के भी अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कामायनी में रूपक तत्व का समावेश सावधानता पूर्वक न होकर सहजता से हुआ है। यही कारण है कि इसकी घटनाओं और पात्रों में रूपक का निर्वाह है जो एक सीमा तक ही हो पाया है। उसमें रूपक की अन्विति का भाव है जो रूपक काव्य के लिए आवश्यक है। कहीं कहीं रूपक तत्वों का मिश्रण हो गया है और रूपक तत्व की दृष्टि से हम दो पात्रों को भिन्न भिन्न नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए विद्वान समालोचकों ने स्थूल रूप से श्रद्धा को हृदय पक्ष और ईड़ा को बुद्धि पक्ष बताया है। स्वयं कवि का भी ऐसा ही संकेत है। इस कसौटी पर इन दोनों चरित्रों की परीक्षा करने पर श्रद्धा में तो हृदय पक्ष का पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है किंतु ईड़ा केवल बुद्धि पक्ष का प्रतीक हो ऐसी बात नहीं है। निर्वेद सर्ग में और आनंद सर्ग में हमें ईड़ा के श्रद्धान्वित रूप के सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं जिन्हें देखते हुए उसे बुद्धि पक्ष का प्रतिपादन करना अनुचित लगता है। निष्कर्ष यह है कि कामायनी में रूपक का क्षीण आभास मिलता है, रूपक की पूर्ण परिणति नहीं मिलती। कामायनी की कथा वस्तु के अनुसार देवगण के उच्छृंखल स्वभाव और निर्बाध आत्मतुष्टि के कारण प्रकृति में असंतुलन हुआ और जल प्लवन में अकेले मनु को छोड़कर सारी देव सभ्यता विनष्ट हो गई। मनु व्यतीत को स्मरण करते हैं, विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। चिंता सर्ग। यह देव सभ्यता चिरंतन रूप प्रवाहमान मानव सभ्यता का ही एक अंश है। सभ्यताओं के उत्थान विकास और अंत का साक्षी इतिहास है। मैं मेसोपोटामिया सिंधु घाटी की सभ्यताओं से हम परिचित हैं जो आज नाम शेष रह गई हैं। उनके भग्नावशेष उनके अस्तित्व के प्रमाण अवश्य हैं। कितनी ऐसी सभ्यताएं हैं जो आज केवल अनुश्रुति में रह गई हैं, न तो पुरातत्व में उल्लेख है न ही उनका साक्ष्य देने वाला कोई अवशेष। किंवदंती स्वरूप अब अटलांटिक महासागर में जलमग्न सहस्त्राब्दियों प्राचीन अटलांटिल सभ्यता ऐसी ही है। कामायनी की देव सभ्यता एक प्रकार की मानव सभ्यता ही है। यदि देव से प्रकाश परक अर्थ लें तो यह सभ्यता असुर सभ्यता से भिन्न नहीं जान पड़ती। यह बलि प्रधान सभ्यता है। सभ्यता के चरम उत्कर्ष में देव अत्यंत भोगी और विलासी हो जाते हैं। स्पष्ट है कि अपनी इंद्रियों की अबाध दृष्टि के लिए उन्होंने प्रकृति संपदा का निर्द्वंद दोहन किया, जैसा आजकल हम देख रहे हैं। इससे प्रकृति में विषमता आती है जिसकी चपेट में देव सभ्यता विनष्ट हो जाती है। जल प्लावन प्राकृति वैषम्य का ही रूप है। ईड़ा सर्ग में मनु को देवासुर संग्राम का स्मरण होता है। यह संग्राम मनु के प्रत्यक्ष घटित हुआ प्रतीत होता है। असुर देहात्मवादी थे, वे देह को ही आत्म यानी सर्वस्व मानकर उसके पोषण और संबंधन में तत्पर रहते थे। उधर सुर गण अहमवादी थे, वे अपनी अपूर्ण अहमता को ही सर्वशक्तिमान मानते थे। कवि के अनुसार दोनों में श्रद्धा का अभाव था, इसीलिए उनमें परस्पर युद्ध हुआ। मनु देवासुर संग्राम के संबंध में सोच विचार करते थे। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। फिर क्यों न तर्क को शास्त्रों से वे सिद्ध करें, क्यों हो न युद्ध, क्यों उनका संघर्ष चला अशांत, वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। ईड़ा सर्ग। कामायनी में सांकेतिक रूप से प्रस्तुत या देवासुर संग्राम देहात्मवादी और अहमवादी सभ्यताओं में परस्पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप विनाश की ओर तो संकेत करता ही है, साथ ही इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक रूपक की भी संभावना निहित है। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टि दैहिक सुख और चाक्षुष जगत से परे नहीं जाती। आज की भौतिकवादी दुनिया इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो शरीर के सुख साधन में सुधार करती जा रही है और इस प्रकार मनुष्य नियमों की बेड़ियों में अपने को जकड़ता जा रहा है। प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार, नियमों में बधते दुर्निवार पीड़ा सर्ग। कुछ ऐसा ही संकेत कामायनी में अन्यत्र भी मिलता है। यहाँ मनोमय विश्व कर रहा रागारूण चेतन उपासना, माया राज्य यही पर पाटी पास बिछा कर जीवन फासना। सुरवर का समाज के एक ऐसे आध्यात्मिक समुदाय के प्रति संकेत है जो अपनी सत्ता को पूर्णतः आत्मपरक मानता है और उसकी यह आत्मपरकता अहम पोषित है। इनके अनुसार मनुष्य की आत्मा अहम सर्वोपरि है, देह से उनका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए दैहिक सुख का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए भी तज्जन्य पाप ताप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। प्रसाद ने सुरवर्ग के जीवन दर्शन का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है। मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर, उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और, आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र भरा, अपना नौ नौ निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा। ईड़ा सर्ग। इतना ही नहीं, कामायनी से वर्णित देवासुर संग्राम का आध्यात्मिक रूपक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी घटित होता है। देह और आत्मा भाव का द्वंद मनुष्य की चिरंतन समस्या है। देह के स्तर पर मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा के स्तर पर ईश्वर की ऊंचाई तक जा पहुंचता है। मानव को यही विडंबना है कि न तो वह पूर्णतः पशु हो सकता है और न ही दैहिक आवश्यकताओं की से सर्वथा परे पूर्ण भावमय या आत्मस्वरूप। कामायनी के अनुसार देह और आत्मा का संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का समावेश हो। मनु मनुष्य की मनन शक्ति का प्रतिनिधि है, प्रतीक है, उसे आदि मानव भी हम मान सकते हैं। मन से ही मनुष्य में इच्छा और तत्पश्चात क्रिया का स्फुरण होता है। गीता में कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। हमारे सुख दुख का कारण मन है। मन ही बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता में सुख या दुख का अनुभव करता है। मन के मुख्य रूप से दो पक्ष हैं, हृदय और मस्तिष्क। वह कभी तो हृदय की ओर झुकता है और वह कभी मस्तिष्क की चकाचौंध में विस्मय विमुग्ध होता है। कामायनी में स्थूलता हमें श्रद्धा में हृदय पक्ष और ईड़ा में मस्तिष्क पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। यद्यपि यह आत्यंतिक सत्य नहीं है। यदि हम रूपक की परिभाषा में कहें तो मनु मनुष्य के मन के प्रतीक हैं तथा श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः उसके भाव पक्ष और बुद्धि पक्ष के। परिस्थिति की प्रतिकूलता में परिस्थिति की प्रतिकूलता में मन का चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। मन की आंखों के सामने देव सभ्यता का ध्वंस और प्रलय के दृश्य आते हैं, इसीलिए वे चिंतित हैं। चिंता परिस्थिति सापेक्ष है। अधिक सुखी व्यक्ति का दुख भी उतने ही परिमाण का होता है। मन का अतीत स्वर्णिम और सुख वैभव से भरपूर था। यही कारण है कि प्रलयोपरांत उनकी चिंता भी कम नहीं है। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। चिंता सर। मन का श्रद्धा अर्थात हृदय पक्ष की ओर खिंचना, क्योंकि हृदय की भाव संपदा उसे लुभाती है। वैसे भी प्रारंभिक जीवन में मनुष्य में श्रद्धा की मात्रा भरपूर रहती है। विषाद की अवस्था में लोग अधिक श्रद्धालु तथा विश्वासी देखे जाते हैं। सुंदर भाव संपदा मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है और सुख देती है। प्रलय के उपरांत हिमालय की उत्पत्तिका में मनु एकाकी और किंग कर्तव्य विमूढ़ है। जीने की राह अज्ञात होने के कारण उसे जीवन निस्तार लगता है। उसी समय दया, माया, ममता और मधुरिमा जैसी रत्नोपम भाव राशि लिए श्रद्धा उसकी सेवा में उपस्थित होती है। मन की श्रद्धा के साथ शांति और सुख की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास मन में सदा के लिए स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि चंचलता मन की सहज वृत्ति है। नित प्रति नए और अधिक सुख की खोज करना मन का स्वभाव है। कामायनी में हम देखते हैं हृदय की अनुकृत बाह्य उदार अर्थात रूप गुण संपन्न सहचरी श्रद्धा को पाकर भी मनु अंत में उससे उदासीन हो जाता है और अधिक सुख की आशा में श्रद्धा का परित्याग कर देता है। कामायनी कार्य के अनुसार मनुष्य की सात्विक प्रवृत्ति को दूषित करने का कार्य असुर पुरोहित आकुल और किलात करते हैं। ये असुर पुरोहित मन में अंतर्निहित तर्क और वितर्क हैं, जिनके फेर में पड़कर मनुष्य किसी वस्तु पर टिकी अपनी आस्था खो देता है और यही वह हृदय पक्ष की अवहेलना करके पूर्ण रूप से बुद्धि का आश्रय लेता है। श्रद्धा द्वारा पालित पशु का वध वस्तुतः मनुष्य के अपने सद्भाव की बलि है। आज के जीवन में हम देख रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार तर्क को अस्त्र बनाकर सद्भाव की बलि चढ़ाता जा रहा है, यद्यपि ऐसा करने से उसका जीवन विपन्न हो जाता है। हृदय पक्ष का सहारा छूट जाने से मनु एक बार पुनः अवसादग्रस्त हो जाता है। तब बुद्धि उसे स्वप्निल लोक की झांकी दिखाकर उत्कट कर्म सागर में संलग्न करती है। क्रीड़ा से प्रेरित होकर मन सारस्वत प्रदेश की प्रजा का शासन करने में सक्षम होता है तथा अपनी प्रभाव वृद्धि भी कर लेता है। किंतु हृदय का योग न होने के कारण बुद्धि मन को शांति और आनंद प्रदान नहीं कर पाती। यही कारण है कि भीतर से अशांत मन ईड़ा को भी अधिकार में लेना चाहता है और वैसा प्रयत्न करता है, किंतु अपने उद्देश्य में मन असफल होता है। कवि का संकेत है कि बुद्ध के एक निश्चित सीमा में उपयोग से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। बुद्ध मनुष्य के अहम को बढ़ाती है। अहम की वृद्धि होने से उसमें एकाधिकार की चेष्टा होने लगती है, जिससे संघर्ष होता है। ईड़ा से संघर्ष होने के पश्चात मनु पुनः असहाय हो जाता है। अंततः मन पुनः हृदय पक्ष की ओर लौटता है। युद्ध स्थल में घायल मनु की कामायनी से भेंट उसका हृदय की सात्विक वृत्तियों की ओर पुनरावर्तन है। श्रद्धा ही उसे मानव जीवन के प्रमुख और अंतिम प्रतिपाद्य समरसता का बोध कराती है। सदा हृदय पक्ष की प्रतिनिधि है। हृदय की सद्वृत्तियों से ओतप्रोत है उसका चरित्र। जीवन और जगत की सत्यता तथा इनकी मंगलमय स्वउद्देश्यता के प्रति विश्वास ही श्रद्धा नामक वृत्ति है। कामायनी के अनुसार श्रद्धावान होने पर भी मनुष्य को निश्चेहस की प्राप्ति हो सकती है। इसका उद्घोष है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा का उत्कर्ष कवि को नारी में अधिक दीर्घ पड़ता है, इसीलिए उसने श्रद्धा के लिए नारी को रूपक के रूप में चुना। श्रद्धा के अभाव में संसार और स्वयं मनुष्य को अपना जीवन पहेली बन जाता है। कामना की किरण से ओजस्वित श्रद्धा के अभाव में मनु एकाकी मनुसर की व्यवस्था के प्रतिकूल विचार करता है। संसार के अतुल और अनंत वैभव के बीच उसके मन में तीव्र वैराग्य जागता है। श्रद्धा ही उसे इसके रहस्यमय वरदान से परिचित कराकर श्रेय प्रेममय कर्तव्य की ओर उन्मुख करती है। यह मनुष्य के द्वंद्वात्मक जीवन के भीतर प्राप्त होने वाले कल्याण का रहस्य समझाती है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा मनुष्य की सात्विक वृत्तियों का ही नाम है। वे सात्विक वृत्तियां जिनसे सृष्टि में सामंजस्य बना रहता है और प्राणी मात्र चाहे वे अधिकृत हों या अधिकारी सुखी और संतुष्ट होते हैं। अपने दिशाविहीन उनका अनुभव करने वाला श्रद्धा मनु के सानिध्य में आते ही ऐसा अनुभव करती है जैसे भटकता हुआ शिशु अपनी माँ की गोद में गोद पा गया है, किंतु श्रद्धा से राहत रहित होते हुए ही वह पुनः जगत की प्रहेलिका में ऊब चूब होता पाता है। श्रद्धा का स्वरूप निश्चल प्रेम से परिपूर्ण है, जो मानव जीवन को सर्वोच्च मानदंड है। वह मनुष्य में न केवल सार्थक प्रेरणा जगाती है, अपितु इच्छा ज्ञान क्रियात्मक मानव जीवन में सामरस्य लाकर अखंड आनंद की प्राप्ति कराती है। ईड़ा को बुद्ध पक्ष का प्रतिनिधि माना जा सकता है, क्योंकि उसके सानिध्य में आकर मनु आरंभ में तो प्रसन्न होता है, किंतु अंत में उसे पीड़ा मिलती है, यद्यपि इसमें मन की गलती रहती है। ईड़ा के माध्यम से कवि ने बुद्ध के नौन्मेष पूर्ण चमत्कारों को दिखाया है और इनकी आत्यंतिक परिणति को भी। प्रसाद की धारणा है कि बुद्ध के चमत्कार एक सीमा तक ही मनुष्य को सुखी कर सकते हैं। सीमा का उल्लंघन होते ही बुद्ध के उत्पाद विपत्तियों का पहाड़ लेकर एक बारगी टूट पड़ते हैं। कामायनी की भूमिका में कवि की उक्ति है, बुद्धिवाद के विकास में अधिक खोज सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। कवि ने ईड़ा का स्वरूप बुद्ध की प्रखरता और तेजस्विता के अनुरूप ही प्रस्तुत किया है। ईड़ा सर्ग में उसका चित्रण इस प्रकार हुआ है। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदिश था स्पष्ट भाल। दो पद्म पलाश चसकत से दृग, देते अनुराग विराग विढाल। त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल। चरणों में थी गति भरी ताल, बिखरी अलके ज्यो तर्क ताल। ईड़ा सर्ग। बुद्ध द्वंद्वात्मक, वह भेद दृष्टि उत्पन्न करती है। अनुराग विराग ज्ञान कर्म आदि अनेकानेक द्वंद्वों में उसका संगुम्फन है। यह भेद दृष्टि ही मनुष्य के समस्त दुखों की जननी है। नारित्व की दृष्टि श्रद्धा ईड़ा से किसी रूप से कम नहीं है, किंतु मनु स्वयं समर्पित होने वाली श्रद्धा को बेकार समझकर त्याग देता है और एक समय अपनी सहायिका की ईड़ा के प्रति अनधिकृत चेष्टा करता है। वह बुद्ध की ही करामात है जो अच्छे और बुरे, सार्थक और निरर्थक का बंटवारा करके जीवन में समर्गताजनित आनंद को कम करता है और स्वयं जीवन को अपूर्ण बताता है। अस्तिक बुद्ध जीवन में आशा और प्रसन्नता का संचार करती है। अपनी लघुता और ब्रह्मांड नियंता के प्रति विनती का भाव आते ही मानव मन उल्लसित हो जाता है। बुद्धि मनुष्य को नास्तिकता की ओर ले जाती है और मनुष्य को इस सर्वोपारिता का उद्घोष करती है। बुद्धि रूपी ईड़ा के साक्षात होते ही मनु प्रकाश के महाओक स्वरूप नियाम शक्ति के अस्तित्व पर संदेह करने लगता है। ईड़ा उसके संदेह को सत्य बताते हुए अपने आप बुद्धि निर्दिष्ट पथ पर चलने की घोषणा करती है। वह जीवन की समस्याओं में निराकरण के लिए एकमात्र बुद्धि को समर्थ मानती है, कथा नियमन और शासन के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाकर मनु को यशस्वी बनाने का संदेश देती है। उसके द्वारा निर्दिष्ट मनु सब कुछ प्राप्त करके भी अतृप्त ही रहते हैं। इस प्रकार कवि ने ईड़ा के माध्यम से बुद्धि की असफलता सिद्ध की है। इतना ही नहीं, उसने बुद्धि को स्वयं भी पंगु और निराश्रित चित्रित किया है। ईड़ा मानव को लेकर हिमालय से मानस तट पर विराजमान श्रद्धा से मिलने के लिए आती है, जहाँ उसके राज्य में असंतोष संघर्ष व्याप्त रहता है। श्रद्धा के चतुर्दिक उसे भी पाप ताप से शांति मिलती है। वह अपने व्यर्थ रिक्त जीवन घट को पीयूष सलील भरने के लिए श्रद्धा तक पहुँचती है। उधर मनु अंत में श्रद्धा का ही अवलंबन लेकर समरसता जनित अनंत और अखंड आनंद की प्राप्ति करता है, जो मनुष्य का सर्वोच्च शुभ है।